शाह हुसैन, पृष्ठ 15। जीवन परिचय। शाह हुसैन मध्यकाल के प्रसिद्ध सूफी कवि हुए हैं। वह न केवल सूफी कवि थे बल्कि महान सूफी फकीर तथा मानवतावादी संत भी थे। इन्होंने सूफी काव्य के इतिहास में एक नई परंपरा का आरंभ किया। उन्होंने बाबा फरीद द्वारा चलाए गए सूफी काव्य के प्रवाह को एकदम बदल दिया। शाह हुसैन ने पंजाबी सूफी काव्य में इस्लामी शरई के स्थान वैष्णवी मत, वेदांत तथा अन्य भारतीय दर्शन का प्रवेश करवा इसके विषय क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया। उन्होंने फरीद काव्य में उपलब्ध शरई अंशों तथा भय की भावना का त्याग कर इसे इश्क और इश्क से संबंधित वियोग के दर से जोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने सूफी काव्य को इस्लामी प्रभाव से मुक्त कर पंजाबी जनजीवन में ढाल दिया। शाह हुसैन की जन्मतिथि संबंधी कई मतभेद प्रचलित हैं, परंतु फिर भी उनका जन्म लाहौर के टकसाली दरवाजे के अंतर्गत 945 हिजरी अर्थात 1538 से 39 ईस्वी माना जाता है। माना जाता है कि शाह हुसैन के पूर्वज हिंदू लाहौरीय थे और कायस्थ थे। उनके दादाजी कुलजस राय थे। उन्होंने किसी मजबूरीवश या हालातवश फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और कुलजस राय से शेख उल इस्लाम बन गए। कुछ लोग इनका गोत्र ढट या ढूटी राजपूत मानते हैं। आपके पिता का नाम शेख उस्मान था। जिस समय शाह हुसैन का जन्म हुआ उस समय आपके घर में बेहद गरीबी तथा बेबसी का आलम था। आपके पिता जीवन यापन के लिए तलवार छोड़कर खड्डी पर कपड़ा बुनने लगे थे। शाह हुसैन स्वयं इस बारे में संकेत करते हैं। उनकी जात के कारण दूसरी जुलाहें औरतें उन्हें ताने मारती है। नाउ हुसैन ते जात जुलाहा गालियां दे दिया ताड़िया वालियों। पृष्ठ 16। शाह हुसैन की आरंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। वह जब 7 वर्ष के थे तो उन्होंने शेख अबूबकर से कुरान शरीफ पढ़ना आरंभ किया। उन्हें 8 से 10 पारे कंठ गए थे। उन्हीं दिनों मौलवी अबूबकर से मिलने एक सूफी दरवेश शेख बहलोल दरियाई आए। वह चन्नियोट जिले झंग के निकट रहने वाले वली अल्लाह बुजुर्ग थे। शेख बहलोल ने शाह हुसैन से वुजू के लिए निकट बहते दरिये से पानी का लोटा भरकर लाने के लिए कहा। वह तुरंत ले आए। आपकी भोली भाली सूरत, बालेपन में ही खिदमत तथा प्रभु के प्रति लगाव देखकर शेख बहलोल को आप पर बहुत स्नेह उमड़ आया। उन्होंने शाह हुसैन को बेहद प्यार किया, कुछ पढ़कर फूका और दुआ दी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि आपका जेहन अर्थात दिमाग खुल गया और कुछ ही दिनों में आपने सारा कुरान मजीद कंठस्थ कर लिया। उसके बाद जब रमज़ान का महीना आया तो नमाज तरावीह पढ़ाते हुए हुसैन ने सारा कुरान मजीद सुना दिया। शेख बहलोल जाते समय आपको हजरत दातागंज बख्श के मज़ार पर कायदा हिजरी देने के हिदायत करके गए। आपने उस पर पूरा अमल किया और दाता के दरबारे की हिजरी इबादत भक्ति तथा रियाजत को अपना नित्य कर्म बना लिया। इस प्रकार शेख बहलोल दरियाई ने शाह हुसैन को बचपन से ही प्रभु प्रेम, पूजा अर्चना तथा सत्संग की चेटक लगा दी थी, जिनका जिक्र शाह हुसैन ने अपनी काफियों में कई स्थानों पर किया है। शाह हुसैन ने तकरीबन 36 वर्ष तक कठिन इबादत तथा रियाजत की। दिन में रोज़ा रखते, सारी रात कुरान मजीद पढ़ते रहते। वह तीसरे पहर दातागंज बख्श की मज़ार से लगी मस्जिद में आ जाते और यहाँ की सुबह नमाज जमात के साए पढ़ते और दिन चढ़ने पर वजीफा करते। 36 वर्ष की उम्र में लाहौर के एक मशहूर तथा आलिम फाजिल बुजुर्ग शेख साईदुल्ला سے تفسیر مدارک سبکن پڑھ رہے تھے کہ تبھی یہ آیت آئی، دما الحیواتن الدنیا الا قد او لعاب، جس کا ارتھ استاد نے بتایا دنیا ایک کھیل کود کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی آپ پر ایک مزوی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی آنند میں حالت میں مکتب ارتھات پاٹھشالہ سے باہر آ گئے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ شاہ حسین شرائی نیم بندش تپسیا کے مارگ کا تیاگ کر حق کے مارگ پر چلنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے آدھیاتمک گرو شیخ بہلول کو ان کی اس حرکت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ لاہور آئے اور آپ کو آدیش دیا نماز پڑھو اور نماز میں قرآن مزید سناؤ۔ مرشید کے آدیش مطابق جب قرآن پڑھتے ہوئے وہ اس آیت پر آئے، پرش 17 علما نشراہ لکا صدر کا، جس کا ارتھ ہے کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارا سینہ۔ اسی پڑھتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس دیے اور نماز توڑ دی۔ باقی کے 27 ورش حسین کی زندگی میں اسے مزوبیت ارتھات مستی تتھا جذب اے شکر ارتھات مستی تتھا مئی کھوری کے عالم میں ہی گزرے۔ شاہ حسین کا سمبندھ صوفیوں کے مالامتی ٹولے سے رہا۔ اس ٹولے کا پرورتک ابو صالح حمدون تھا۔ اس ٹولے کی وشیشتا وچار سوتنترتا ہے۔ ان کا باہری آچرن تتھا آنترک چرتر میں ویرودابھاس ہوتا ہے۔ وہ دکھانے کے لیے جان بوجھ کر ایسا ویوہار کرتے ہیں کہ لوگ ان سے گھڑا کریں، پرنتو انتراتما سے یہ لوگ ایک کچے سادھک ہوتے ہیں۔ اس سمپردائے کی وشیشتا نتیہ سنگیت نشو کا استعمال تتھا سوتنتر ویوہار ہے۔ اصل میں ملامت شریعت کی بے ادبی اور بے پرواہی کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کا دھیان اپنی اور سے ہٹا کر اللہ کے مارگ پر نے سنکوچ آگے بڑھنا ہی ملامت ہے۔ سچے کرم کرتے ہوئے دنیا کا ڈر سامنے نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے نفس ارتھات من کو فرعون کے نفس سے بڑا ماننا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو فرعون کے دل سے اونچا اور اتم سمجھنا چاہیے۔ ملامتی صوفی دنیا کی شہرت پرسدھی تتھا خیاتی سے پلہ چھڑاتے ہیں، دنیا سے بھی اپنا پلہ چھڑا لیتے ہیں۔ شاہ حسین کی کویتا میں اس بھاؤ سے اوتپروت وچار کئی استھانوں پر ملتے ہیں۔ ایک درگہی وچ سہاگن سئی جو کھلی کھل نچ کھل کھلوئی، دو اسی بریاں وے لوکاں بریاں کول نہ بہو وے اسی بریاں۔ اسی ملامتی بھاونا کے کارن ہی شاہ حسین نے اپنا نتیہ کرم اور ویش بدل لیا۔ اب انہوں نے صبح سے لے کر سانجھ تک گانے بجانے والوں سے ناتا جوڑ لیا، داڑھی آدھی کٹوا لی، ہاتھ میں شراب کی سراہی تتھا گلاس تھام لیے اور شہر میں المست ہو کر گھومنے لگے۔ راگ رنگ اور ناچ گانے کی محفلوں اور مجلسوں میں سوئم کو جلانے لگے۔ اس پریورتن کا کارن مزاج کی منزل طے کرنی تھی، جس کے بعد حقیقت کی سیڑھی پر چڑھا جاتا ہے۔ یہ صوفی مارگ کے پڑاؤ ہیں۔ مزوبیت کے اسے راستے پر چلتے ہوئے شاہ حسین کو مادھو لال ملا۔ مادھو لال کے ساتھ شاہ حسین کا ناتا اس قدر گہرا ہو گیا کہ لوگوں نے انہیں مادھو لال حسین کہنا آرم کر دیا۔ حالانکہ اس سمبندھ کو لے کر ودوانوں پرشٹ 18 میں کافی مت بھید ہے۔ کئی ودوانوں کا مت ہے کہ شاہ حسین تتھا مادھو لال کا آپسی سمبندھ گرو ششیہ والا تھا اور شاہ حسین کے انتقال کے بعد کئی ورشوں تک مادھو لال ان کی گدی پر وراجمان رہا۔ اس بارے میں بھی ودوان ایک مت نہیں کہ مادھو لال اصل میں हिंदू थे या मुस्लिम, कई विद्वानों के अनुसार वह एक खूबसूरत ब्राह्मण लड़का था जिसकी खूबसूरती पर हुसैन मोहित हो गए। मियां मौला बख्श कुश्ता इस प्रेम कहानी को किस्से के रूप में चटखारे लेने वाले अंदाज में पेश करता है। उसके अनुसार मस्ती में डूबे हुए हुसैन एक बार रावी की ओर जा रहे थे कि इन्होंने शादरे के वृक्ष के नीचे एक सुंदर सजीला कच्ची उम्र का ब्राह्मण लड़का माधो घोड़े पर जाते हुए देखा। वह इसे देखते ही उस पर फिदा हो गए और उनका पीछा करते हुए रावी पार शहर दरा उसके घर तक जा पहुंचे। माधो का प्यार जीतने के लिए उसके घर के बाहर इश्क भी धुनी रमा दी। माधो भी हुसैन की दीवानगी से प्रभावित हो गया। माधो के माँ बाप तथा रिश्तेदार इस संबंध से परेशान होने लगे, परंतु इश्क ना पूछे जात सफात। दोनों का प्यार परिवार समाज की हदें पार कर गया और वह एक दूसरे से इस कदर समा गए कि अब हुसैन हुसैन न रहा बल्कि माधोलाल हुसैन हो गया। मौला कुश्ता के इस किस्से को देखकर अफसोस होता है क्योंकि वह यह भूल गए कि वह किसी आम इंसान और किसी छोकरे या लौंडे के बारे में नहीं लिख रहे थे, वह एक पहुंचे हुए संत फकीर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इसे इश्क मिजाजी और साधारण किस्सा समझ बयान किया, जबकि बाकी विद्वान इसे मुर्शीद मुरीद या गुरु शिष्य के रूप में प्रकट करते हैं। यह सच है कि सूफी बन जाने के बाद हुसैन आम लोगों में प्रचार करने लगा। रावी पार शादरा से ब्राह्मणों का एक लड़का उनकी धर्म सभाओं में काफी आने लगा। उस पर हुसैन की शिक्षा का असर पड़ने लगा। उस ब्राह्मण लड़के ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसका यह स्नेह प्यार इस हद तक बढ़ गया कि जिस दिन माधो ना आता तो उसका मन न लगता। उसे देखने के लिए हुसैन उसके घर तक जाने लगे। यह बात माधो के माँ बाप तथा अन्य लोगों को काफी नागवार लगने लगी, इसलिए वह माधो को हुसैन के पास जाने से रोकने लगे। परंतु सच्चे प्यार के कभी परिवार या समाज रोक नहीं पाया, इसलिए हुसैन और माधो लाल का रिश्ता हमेशा के लिए बना रहा। मजाज की मंजिल तय करने के बाद हकीकत की सीढ़ी चढ़ने के लिए शाह हुसैन ने दुनिया का विचार मन से एकदम निकाल बाहर फेंक दिया और फकीरी धारण कर ली। मस्ती और मजूबियत की हालत में रहने के बावजूद उसकी कड़ी मेहनत तपस्या रहस्यमयी जिंदगी और पराशरी शक्ति तथा शोहरत सारे देश में फैल चुकी थी। तहकी काते चिश्ती में जिक्र आता है कि जब अकबर बादशाह लाहौर आया तो उसने शाह हुसैन को अपने दरबार में बुला लिया। जब शाही अधिकारी हुसैन को दरबार में लेकर हाजिर हुए तो वह अजीब सी हालत में था। दाढ़ी कटी हुई, एक हाथ में शराब की सुराही और दूसरे में प्याला पकड़ा हुआ। यह देखकर अकबर ने पूछा, कादरी होकर यह हाल? हुसैन ने करामात दिखाई और शराब की सुराही में से ठंडा पानी शरबत और दूध निकाल दिए। अकबर यह देखकर समझ गया कि वह एक पहुंचा हुआ फकीर है, इसलिए उसे इज्जत से दरबार से विदा किया। यह वेश यह रूप इसलिए धारण किया हुआ था ताकि लोग उनसे घृणा करें और लोगों की लानतों मलामतों से उसके दिल की सफाई होती रहे। यह माना जाता है कि शाह हुसैन एक करामाती फकीर थे और तावीज धागा करते थे। उनके करामातों की कई घटनाएं सामने आती हैं। एक बार किसी खरबूजे बेचने वाले ने आपसे कहा, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, आप खरबूजों की रखवाली करें। हुसैन ने ऐलान किया, टके टके खरबूजा साथ में बेटा। कहते हैं उस समय जिन लोगों ने आपसे खरबूजे खरीदे उनके घर पुत्र पैदा हुआ। इसी प्रकार एक बार उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मैं फला औरत पर मरता हूँ लेकिन वह मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देती। आपने फरमाया, कुछ दिन उसके गांव के नाम का जाप करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया और वह औरत स्वयं उस आशिक के कदमों में आ पड़ी। यह भी कहा जाता है कि माधव के माँ बाप हरिद्वार स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने माधव को भी साथ ले जाना चाहा। शाह हुसैन उसकी जुदाई एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने माधव से कहा, तुम इन्हें जाने दो, हम स्वयं तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। यह सुनकर माधव चुप हो गया। वह लोग चले गए। एक दिन माधव उदास देखकर उन्होंने कहा, माधव मेरे पैर पर पैर रखकर आंखें बंद कर लो। माधव ने ऐसा ही किया तो उसने देखा कि वह अपने माँ बाप के साथ हरिद्वार में स्नान कर रहा था। कुछ देर बाद उसे आंखें खोलने को कहा तो वह अपने मुर्शीद के पास था। वापस आकर माधव के माँ बाप ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि जब वह स्नान कर रहे थे तो माधव उनके साथ था। माधव यह करामात देखकर मुसलमान हो गया। माधोलाल 903 हिजरी में पैदा हुआ और शाह हुसैन की मृत्यु के बाद 35 वर्ष तक उनकी गद्दी पर सुशोभित रहा और 1043 हिजरी में उसका देहांत हुआ। शाह हुसैन के मलामती और अलमस्त होने के बावजूद उनकी ख्याति बढ़ती पृष्ठ 20 ही जा रही थी। इस ख्याति से चिढ़कर और मुसलमान होकर शरई शरीयत की पाबंदी न रखने का कारण मौलवी काजी उनसे बहुत नाराज रहने लगे। एक बार शाह हुसैन मस्ती मलंग बना नाचते झूमते और गाते हुए लाहौर के बाजारों से गुजर रहा था कि काजी मखदूमुल मुल्क ने उन्हें पकड़कर सजा देने चाहिए। शाह हुसैन काजी की ऐसी नीयत को भाप गए। उन्होंने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगे, इस्लाम का मुख्य सिद्धांत है तौहीद, अर्थात अल्लाह एक है और उसके रसूल हजरत मोहम्मद साहब हैं। हम दोनों इस बात को मानते हैं। काजी ने सिर हिलाया। इस्लाम के चार जरूरी आदेश हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। नमाज और रोज़ा मैंने छोड़े हुए हैं, हज और ज़कात तुमने छोड़े हुए हैं। यदि मैं पहले दो कारणों का दोषी हूँ तो तुम बाकी दो के दोषी हो। फिर तो सजा के हकदार हम दोनों ही हैं, अकेले मुझे ही सजा क्यों? काजी लाजवाब हो गया। यह माना जाता है कि जो आदमी शाह हुसैन के पास मुरीद बनने के लिए आता, हुसैन उससे कहते, दाढ़ी कटा लो और शराब पियो। यदि वह मान लेता तो उसे मुरीद बना लेते, तो नहीं तो वापस भेज देते। मौलाना अब्दुल हकीम सोयाल कोटी लिखते हैं कि एक बार उन्होंने हुसैन के पास हाजिर होकर उनका मुरीद होने की अर्ज की। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, क्यों हमें छोटा बनाना चाहते हो? मेरा मंत्र मुल्लाओं पर नहीं चलता, जाओ, क्यों शहर में हमें बदनाम करते हो? एक बार हुसैन से पूछा गया, तुम कौन हो? तो जवाब में हुसैन ने कहा, न स्थिति न मुसाफिर, न मुसलमान न काफिर, मैं वही हूँ जो पहले था। इससे जाहिर है कि हुसैन को नग्नता, नमूजियत या दुनियादारी की जरा भी परवाह नहीं थी। वह स्वयं लिखते हैं, निमाड़िया दे रब्बा रब्बा होई, भटी पई तेरी चिट्ठी चादर, चंगी फकीरा दी लोई। वह शेख बनना नहीं चाहते थे। उनके लिए यह बातें फरेब और झूठी थी। असा की तक्कू शेख सदावणा, तुसी ना कोई आंखों पीर है, कुड़ी गलना भावदी। पृष्ठ 21। दुनिया के रीति रिवाजों से ऊपर उठना ही असल में ऊंचा मुकाम हासिल करना है। बाहर पाक अंदरी अलूदा, किया तू शेख कहा वही, कहे हुसैन जे फारिक थी वही, ता खास मरातब पा वही। शाह हुसैन को कोई हुसैन कहे या शाह, शेख कहे या लाल हुसैन, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं हुसैन को अपने नाम के साथ फकीर शब्द का प्रयोग करने में आनंद मिलता है। यह भी कहा जा सकता है कि यह शब्द शाह हुसैन का तकिया कलाम ही बन गया था। उदाहरणार्थ, कह हुसैन फकीर साईं दा, कह हुसैन फकीर निमाड़ा, कह हुसैन फकीर गदाई, कह हुसैन फकीर रबाड़ा, कह हुसैन फकीर मौले दा। मस्त मलंग गरीब बेचारा कहलवाने में उन्हें गर्व महसूस होता। उनकी निगाह में फकीर का दर्जा वही है जो आध्यात्मिक मुकाम में ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त होता है। फकीर के लक्षण बताते हैं हुए वह कहते हैं, महबूबा फकीरा दा साई नेगबान, जाहिर बातन एक करी जाड़नी, सब मुश्किल थी या आसान। जो परमात्मा के प्रिय फकीर होते हैं उन पर वह मालिक सदा मेहरबान रहता है। फकीर वह है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को, जाहिर तथा अप्रकट को एक समान समझते हैं। प्रत्येक प्रकार की मुश्किल को वह आसान ही मानते हैं। फकीरी के बड़प्पन से संबंधित कुछ और पद देखें। दुनिया छोड़ी फकीर थिया से जागी प्रेम कड़ी, कहे हुसैन फकीर साईदा जाहड़ी आप थड़ी, मैड़ी जान जो रंगे सो रंगे, मस्तकी जिन्हा दे पई फकीरी, भाग तिन्हा दे चंगे, औखी घाटी भिखड़ा पैणा रा फकीरोदा लंबा। इस पहुंचे फकीर शाह हुसैन ने अपने जीवन के पहले 36 वर्ष तक कठिन तपस्या, रियाजत तथा बंदगी की और बाद के 27 वर्ष मस्ती तथा मजबूरी में पृष्ठ 22 गुजारे और इस प्रकार कुल 63 वर्ष की आयु बिताकर 1008 हिजरी मुताबिक 1599 ईस्वी को प्रभु को प्यारे हो गए। कहा जाता है कि हजरत हुसैन ने अंत समय में यह आदेश दिया कि मौत के बाद उन्हें शाहदरे के पास दफनाया जाए। 13 वर्षों के बाद रावी में बाढ़ आएगी और उनका मज़ार गिर जाएगा। उस समय उनकी लाश को वहां से निकालकर बाबूपुरे में दबा देना और माना जाता है कि ऐसा ही हुआ। मज़ार गिरने से हुसैन के खलीफा मोहम्मद साहेब ने सेवकों समेत कब्र का मुंह खोला, परंतु लाश ना मिली। निराश होकर जाने लगे तो कब्र से आवाज आई। कब्र के अंदर सिरहाने को और एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। वही हुसैन का मुबारक शरीर है। परमात्मा ने हुसैन के शरीर को अपनी बख्शीश से फूल बना दिया है। उस गुलदस्ते पर नया कफन डालकर बाबूपुरे ले जाकर दफना दो। हुसैन की लाश बाबूपुरे अर्थात बगबानपुर 1021 हिजरी में फिर से दफनाई गई। यह स्थान शालीमार बाग के नज़दीक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और रात को चिरांगा होता है, इसलिए इसे मेला चिरांगा कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में आखिरी इतवार को लगता है। मेला चिरांगा में रात को कव्वाल शाह हुसैन की काफियां गाते हैं। यह मेला अब एक बड़े उर्स का रूप धारण कर चुका है। शाह हुसैन ने कबीर और बुल्ले शाह की तरह शेख साहिब और मुल्ला मौलवियों की अच्छी झाड़ फटकार की है। वह प्रभु प्रेम में मदमस्त फकीर था, वह इश्क में दीवाने थे। उसे इस्लामी शराइत तथा कर्म कांड में बंधना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार इश्क कोई आसान काम नहीं है। यह तो सुई का नक्का है जिसमें से नम्रता, कठोर तप, जुहद और मस्ती फकीर द्वारा धागा सूक्ष्म प्रवृत्तियों के कारण ही पार जा सकता है, जबकि शेख और धर्म आचार्य बाहरी तौर पर साफ उजले वस्त्र पहनते हैं, परंतु अंदर उनके गंदगी भरी होती है। शाह हुसैन के अनुसार, ए शेख, तू इस गंदगी से, झूठे व्यवहार से फारिग हो जा, मुक्ति प्राप्त कर ले तो प्रभु के दरबार में विशेष पदवी प्राप्त कर सकता है। देखें उसके संबोधन में कितना व्यंग छुपा हुआ है। आशिक होवे ता इश्क कमावे। राह इश्क का सुई का नक्का तागा होवे ता जावे। बाहिर पाक अंदर अलूदा क्या तू शेख कहावे। तो कहे हुसैन जे कारिक थीवे तो खास मरातबा पावे। शाह हुसैन ने अनेकों भावों और विषयों को विभिन्न ढंगों से प्रकट किया है। भावों के साथ उसकी बोली भी बदलती है, वायुमंडल भी बदलता है, अलंकार तथा रूपक उपमाएं भी बदलती हैं, परंतु उसकी मस्ती भरी रहस्यमयी कैफियत तथा आत्मिक दशा परिवर्तित नहीं होती, वह सदा स्थिर रहती है। मूलतः वह मस्ती का नमाजी है। तब साधना, रियाजत, बंदगी तथा इबादत से वह आनंदमयी मस्ती की ओर आता है, तो उसका दुनिया तथा परमात्मा को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तब वह भोगवातिता से ऊपर उठकर रूहानी आलम के शिखर की ओर बढ़ता है। बाह्य आवरण को छोड़कर अंतरात्मा में डूबता है। वह कुरान मजीद को सिर्फ कंठस्थ करने की बजाय आयतों के आंतरिक भावों तथा अर्थों को ग्रहण करने लगता है। उसका यह परिवर्तन बहुत गहरे अर्थ रखता है। वह शराब तथा आवारापन को मन की धुलाई करने और आत्मा को निर्मल बनाने का उपाय समझता है। इस प्रकार शाह हुसैन पुरुषार्थ से सहज अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। एकेश्वरवाद। शाह हुसैन एकेश्वरवाद को मानने वाला है। वह परमात्मा को किसी देवी देवता, पीर पैगंबर, वली औलिया तक सीमित करके नहीं देखता। वह निर्गुण संतों भक्तों की भांति ईश्वर प्रभु एक ही हस्ती ब्रह्मा जिस ढंग से पुकारे, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही हस्ती एक ही अस्तित्व को स्वीकार करता है। अलग अलग स्थानों पर इन्होंने प्रभु को जिन प्रचलित नामों से संबोधित किया है वह इस प्रकार है: राम, रहीम, हर, सांवल, वर्रब, अल्लाह, रांझा, साहिब, शहु, मौला या मौला, मालिक, दाता, भुक्ता, दिलबर, श्याम, वृंदावन, साई, ठाकुर, छैला, प्रभु आदि। उदाहरणार्थ: इक्के दिलबर सम छटी रविया, दूजा नाही कदाई, कहे हुसैन फकीर निमाणा, सती गुरु तो बलि जाई, कहे हुसैन फकीर निमाणा तै बुझाऊ, कोई होर न जाना, तू ही दाना तू ही बीना, तू है ताण निताणी दा। इश्क। सूफी साधना में इश्क की महत्ता को सर्व प्रमाणित माना गया है। संपूर्ण सूफी मत इश्क की बुनियाद पर खड़ा होता है। परमात्मा के अलावा किसी और पर ध्यान न लगाना ही सूफी मत है। सूफी साधक परमात्मा की प्रेम प्राप्ति के लिए प्रत्येक चीज का ध्यान करने के लिए तत्पर रहते हैं। सूफी साधक हर उस चीज से घृणा करते हैं जो परमात्मा के प्रेम में रुकावट बनती है। शाह हुसैन ने इश्क को फकीरी का आधार माना है, सूफी साधक की टोहड़ी है। वह साधक अपने प्रीतम की याद में पृष्ठ 24 सदा बेचैन रहता है। उसे सिर्फ अपने सुंदर यार की तलब है। इश्क फकीरा दा फकीरा दी टोहड़ी, ए वसत अगोचर सोहणी, असा तलब तेरी है सोहणी, असा हरदम रब धियावण। जिस दिल में इश्क का निवास हो जाता है उसमें किसी और विचार या भावना के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिथे आए वसिया मेरा प्यारा, उथे जिदा उथे दूजा कोई ना समावदा। प्रेम मार्गी सूफी साधकों का मुख्य निशाना अर्थात मरकज रब है। इसके प्रेम में लीन होना ही उनका एकमात्र मकसद होता है। यह एक प्रकार से निष्काम भक्ति है। एक प्रेमी के मन में अपने प्रेम आदर्श के लिए अपार प्यार होता है। प्रेमी के हृदय में प्रेम की तीव्रता तथा प्रचुरता को बयान करने के लिए शाह हुसैन कहता है कि रब के आशिक के हृदय में साईं की तलब इतनी शक्तिशाली होती है जैसे नशाखोर को नशे की तड़प, कामी पुरुष के लिए काम वासना का आकर्षण तथा बादशाह के मन में राज सत्ता पाने की लालसा। असल तलब साई दे नाम दी, चोर करन नित चोरियां, अमले नु अमल दिया घोड़िया, कामी को चिंता काम दी, असा तलब साई दे नाम दी। शाह हुसैन का इश्क नित्य नवीन है, उसकी आत्मा निरंतर खुशी तथा आनंद में डूबी रहती है। यह आनंदमयी अवस्था कभी भंग नहीं होती, इश्क में एक सदाबहार ताजगी है। इसलिए वह लिखते हैं, इश्क फकीरा दा कायम दायम कबहू न थी वह बेहा। सूफी फकीरों ने इस्लामी शरीयत को इसलिए मानने से इनकार किया क्योंकि वह एक प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध है जिसकी पालना प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए जरूरी है। यह बाहरी आवरण है तथा इसे कर्मकांडी अवस्था मानते हुए सूफी साधक इसे इश्क के रास्ते की रुकावट मानते हैं। उनके लिए शरीयत एक निचली अवस्था मात्र है जिसका उनके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। सूफी मत तथा इस्लाम पृष्ठ 25 में यह मौलिक भेद है, जहां इस्लामी साधना समष्टि प्रधान है वहां सूफी साधना वैयष्टि प्रधान है, जो बाह्यमुखी की बजाय अंतर्मुखी है। इश्क में मझे हुए शाह हुसैन को भी शरीयत वल फालतू नजर आती है। वह शरीयत को छोड़कर मौलवियों से कहता है, बहु वे काजी दिल नहीं राजी, गला होइयां ता होवण वलियां, एक पर्दे हरफ कुरान, एक मसले कर दे नाल जुबान, एह गलना हासी हेह दी। बिरहा अर्थात वियोग। सूफियों ने बिरहा को सर्वोत्तम माना है। उनका मानना है कि परमात्मा से बिछुड़कर रूह अर्थात आत्मा सदा के लिए बिरहा में तड़पने लगती है और बिरहा की आग में जलती है। असल में बिरहा ही सच्चे प्यार की पहचान है, बिरहा प्रेम का सौंदर्य है। शाह हुसैन बिरहा के महत्व को जानने के कारण इसे इश्क की संपूर्णता का मापदंड मानता है। बिरहा ने उसे नम्रता सिखाई, इसी वजह से उसके काव्य में दृढ़ता, गंभीरता, अचलता तथा अन्यता दिखाई देती है। इसमें काव्य में अपने शहू प्रीतम रांझण या श्याम को मिलने की तीव्रता प्रकट होती है। इस मकसद की प्राप्ति के लिए बिरहन आत्मा सभी प्रकार की मिनते करती है। उदाहरणार्थ, मैं भी झोंक रांझण दी जाना, नाले मेरे कोई चले पैरियां पाओ दी मिनता कर दी, जाना ता पिया इकले, नदियां पार रांझणा दा ठाणा, कीता कोल जरूरी जाना, मिनता करा मल्लाह दी। इश्क को पाने के लिए विरहा की आग में जलने को वह इस प्रकार बयान करता है, इश्क बिछोड़े बाली ढाढ़ी, हरदम मैनो तापे, सिकड़ दूर न थी वे दिल थी, वेखण नो मन तापे। पृष्ठ 26। सूफी काव्य में जीवात्मा तथा परमात्मा संबंधी प्रेम तथा विरह को प्रकट करने के लिए सूफी कवियों ने भारी मात्रा में पंजाबी किस्सों के नायक नायिकाओं के प्रेम हवाले को अपनाया, जिनमें प्रमुख हीर संज्ञा, ससी पुन्नु, सोहणी, महिवाल तथा अन्य कई प्रेमी प्रेमिकाएं हुए हैं। परंतु सूफी काव्य में शायद सबसे पहले ही रांझा के प्रेम हवाले को शाह हुसैन ने अपनाया। उसके बाद इनका प्रयोग आमतौर पर ही किया जाने लगा। शाह हुसैन के काव्य में इस इश्किया किस्से के पात्र बहुतेरे ढंग से नजर आते हैं। उदाहरणार्थ, माही माही कुकदी नी मैं आपे रांझण होई, रांझण रांझण मैनू सबको आखो, हीर न आखो कोई, मैणा दिल रांझण रावल मंगे, जंगल बेले फिरे दुड़े दी, रांझण मेरे संग दुनिया नाशवान। सूफी काव्य में दुनिया को चार दिनों का खेल तमाशा कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह दुनिया नाशवान है, अस्थिर है, जो जन्म लेता है उसका नाश, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए। शाह हुसैन संसार की नश्वरता को चरखे के प्रतीक द्वारा प्रकट करता है। जिलाहा होने के कारण इस विचार को निभाने में उसे महारत हासिल हुई। रंगला चरखा मिन्ते घट्टण पूर्ण छली तंद तक्कला गोहणा दास कपाह अटेरन आदि शब्दों को सुंदर रूप को में प्रयोग किया है। चरखा मेरा रनलड़ रंग गुलाल जेवड़ चरखा तेवड़ मुने नी सहियो मैं कत्तदी कत्तदी हुट्टी अत्तड़ दे विच गोणे रुल दे हथ विच रह गए जट्टी निक्का कत्त दिए कुड़िए कैन नू आपनू जिहां करसे तेहां पाए दोष्ट माए बापनू। इस संसार को छोड़कर सभी को जाना पड़ता है। बाबुल की यह गलियां हमेशा के लिए सुनसान हो जाएंगी, सांसों की डोर टूट जाएगी। आदमी के अच्छे पृष्ठ 27 कर्म तथा सद्भाव ही अल्लाह के दरगाह में उसके सहयोगी होते हैं। एक दिन तैनु सुपना थीसन गलियां बाबल वालियां वे उड़ गए भौरे फूला दे कौलो साणी पत्तर सणी डाइला रिपीट डालिया। शाह हुसैन फकीर रब्बान सो होसी जू रब नू भाणा ओड़क इथो उथे जाना इस वेले नू पछोता सी दरगाह विच सुहेली वते दास रंगायो आपनू निक्का कुत्ते गुंझल न घते पहुंचिया लोड़े पांकनू। अवगुण भरी जीवात्मा। शाह हुसैन स्वयं को अवगुण भरा निमाड़ा अर्थात बेचारा बदसूरत प्रभु का गुलाम आदि बताता है। वह परमात्मा से अपने आप को पार ले जाने की विनती करता है। तारी वे रब्बा में ओ गुणहारी मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुकिया मनहु ना विसारी मेरे साहिबा। वह प्रभु के आगे स्वयं को पूर्ण समर्पित कर अपने आप को साहिब के रंग में रंगा हुआ बयान करता है। मंदी हाँ की चंगी हाँ भी साहिब तेरी बंदी हाँ गहिला लो जान ही दीवानी मैं रंग साहिब दे रंगी हाँ। हुसैन को अपने साई पर पूरा भरोसा है। साई जिन्हा दड़े वली तिन्हा नो गम कैंदा वे लोका साजन मेरा अखी विच वजदा मैं गलिए फिरा निशंगी हाँ। पृष्ठ 28 कहे हुसैन फकीर साई दा मैं वर चंगे नाल मंगीगा मंगी हाँ। भारतीय शास्त्रीय रागों का प्रयोग। बाबा फरीद के चार पद भारतीय शास्त्रीय रागों की बंदिश में रंगे हुए मिलते हैं। दो राग आसा में और दो राग सोही में शाह हुसैन तक पहुँचते पहुँचते पंजाबी सूफी हलकों में भारतीय राग प्रसिद्ध हो गए होंगे। इसी कारण शाह हुसैन ने इतने सारे शास्त्रीय रागों को अपनाया। उदाहरण के लिए श्री राग गरुड़ी माज आसा आसावरी गुजरी देवगंधारी बडहंस सोरठ धनाश्री जैजेवंती तिलंग सूही बिलावल गौण रामकली तुखारी किदारा भैरव भैरवी बंसत हिडोल सारंग कानड़ आदि कुछ रागों के नमूने देखे। कुछ रागों के नमूने देखें। राग केदार साजन तुमरे रोसड़े मोही आदर करे ना कोई दूरी दूर करन सहेलियां मैं तुर तुर ताकों तो ही। श्री राग तू है ताड़ तू है बाणा सब किछु मेरा तू, कहे हुसैन फकीर निमाड़ा मैं नाही सब तू। राग तिलंग अमला दे ऊपरी होक निबेड़ा, क्या सूफी क्या भंगी। जो रब भावे सोई थीसी साई बात है चंगी, आपे एक अनेक कहावे साहिब है बहुरंगी। कहे हुसैन सुहागड़ी सोई जो सहु दे रंग रंगी। राग धनसारी कितु गुड़ लगेगी शहु नु प्यारी, अंदर तेरे कुणावती गईयो ही मूल ना दितियो बुहारी। शाह हुसैन ने लगभग 35 भारतीय शास्त्रीय रागों में काव्य रचना की और यह सभी राग तकरीबन वही है जो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में मिलते हैं। पृष्ठ 29। इसी कारण से यह अनुमान लगाया जाता है कि शाह हुसैन ने उस पवित्र ग्रंथ में स्थान पाने के लिए इन रागों को अपनाया। कई विद्वानों का मत है कि शाह हुसैन अपनी रचना लेकर श्री गुरु अर्जुन देव जी से मिले भी थे, परंतु यह सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि आदि ग्रंथ का कार्य 1604 में संपूर्ण हुआ, जबकि शाह हुसैन का देहांत 1539 या 1600 ईस्वी में हुआ। चाहे शाह हुसैन की रचना को अन्य संतों भक्तों की वाणी की तरह पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल होने का गौरव नहीं मिला, परंतु उन जैसे सूफी कवि को इस बात का कतई अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। वह आज भी सूफी काव्य में एक मील पत्थर माने जाते हैं, इसी कारण आने वाले समय तक वह सदा जीवित रहेंगे। बोली और शैली। शाह हुसैन की बोली प्रामाणिक और व्यवहारिक है, जिसमें मिठास, सादगी, सरलता, संयम और संकोच तथा बरसाती नदी जैसा वेग है। उनके शब्दों का चुनाव तथा सजावट अद्वितीय है। उन्होंने हिंदू मत के नजरिए तथा लफ्जों मुहावरों से भी काम लिया, साथ ही अपनी बोली में मुल्तानी, लाहौरी तथा पोठोहारी हिंदी फारसी के लफ्जों का इस्तेमाल किया। हुसैन की मीठी सीधी मुहावरेदार लोक भाषा लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपनी उच्च भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्द तथा सामग्री आदि नित्य प्रति के जीवन से ली। उन्होंने गांवों में बसे हुए लोगों के रोजगार, काम धंधों, हथियार धंधों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों तथा घरेलू जीवन से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिद्धांतों की पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल कर सूफी भावों को ईरानी कविता की भांति तलमीहात अर्थात ऐतिहासिक मिथक हवालों का जिक्र कर कविता में किस्सा काव्य तथा आध्यात्मिक काव्य जैसा स्वाद तथा रंग भर दिया। उन्होंने हीर रांझा, ढोला मारू, मंसूर, सांवल, राम, मूसा आदि कई हवालों का जिक्र किया। शाह हुसैन ने रूपक उपमाओं, प्रतीकों, बिंबों, चिन्हों, संकेतों तथा अलंकारों का यथासंभव प्रयोग कर शैली तथा शब्दावली को साहित्यिक रंगत प्रदान की। मुसलमानी तथा भक्ति मत की शब्दावली का प्रयोग शाह हुसैन की आध्यात्मिक तथा सांप्रदायिक जानकारी तथा समझ की गवाही भरता है। भारतीय या हिंदू आध्यात्मिक शब्दावली का इस्तेमाल शायद शाह हुसैन ने दूसरे अन्य मुसलमान कवियों से ज्यादा किया। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों को सूफी भावों में धुलने नहीं दिया, यह भी उनकी एक विशेषता मानी जाती है। शाह हुसैन की शब्दावली भक्ति मार्ग या संत मत जैसी पृष्ठ 30 इतनी स्वाभाविकता से प्रयोग की गई कि यह मुसलमान कवि लगता ही नहीं बल्कि संत मत का एक गुरमती कवि लगता है। शाह हुसैन के ऊपर सिख परंपरा का गहरा प्रभाव था, इसलिए उनके काव्य में ऐसे काव्य शब्दावली के अनेकों शब्द सहजता से दिखाई देते हैं। सदगुरु संजय शहुधनी हरि दसवे द्वार, नाम भाव सागर गीत, ध्यान ज्ञान सुरति हुक्म संयोग कंत मन जाप पाप माया महिमा राम नाम अस्थिर सात संगत कूड़ पसारा कूड़ी दुनिया आदि। अरबी फारसी शब्दावली वैसे ही पंजाबी के आदिकाल से इसमें घुल मिल गई थी, जैसे शादी गति फकीरी तकबरी मुर्शीद मीर मुल्ला काजी जहमत अजाब खसमाना नेकी बदी इबलीस इज़राइल दाना बीना आदमी मुर्दा मलक सुल्ताना आदि। शाह हुसैन की बोली नहीं मुहावरेदार कविता है। प्रत्येक काफी का प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई केंद्रीय मुहावरा और एक न एक अटल सच्चाई या लोकोक्ति जरूर होती है। उदाहरण स्वरूप, समय पर पछताना दाग लगना जाग आना हाथ मल मल कर पछताना दर दर आवाज लगाना उठकर चलना बर्फ चीरना आदि मूल तथा मौलिक मुहावरे अब उनकी पंक्तियों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार अनेक बोलियों तथा भाषाओं के सुयोग ने शाह हुसैन की बोली तथा शैली को क्लासिक मध्यकालीन तथा आधुनिक रंगत दे दी। वह पंजाबी का सुंदर आदि सुनहरी मध्यकालीन युग तथा आधुनिक युग के दरवाजे खोलती प्रतीत होती है। काफी शाह हुसैन की सारी रचनाएं काफियों में हैं। शाह हुसैन की काफियों को अध्ययन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि काफी क्या होती है, काव्य की किस विधा को काफी कहा जाता है। शाह हुसैन की काफियों की विस्तृत चर्चा करने से पहले संक्षेप में काफी के बारे में समझ लेना चाहिए। सूफी काव्य में काफी का वही स्थान है जो उर्दू फारसी काव्य में गजल का है। सूफी अनुभव के लिए काफी अत्यंत सुयोग काव्य भेद है। असल में भावों की तीव्रता तथा सूफियाना अनुभव की सूक्ष्मता को सुंदर और सौहार्दपूर्ण ढंग से ढाल कर पेश करने में जितनी महत्वपूर्ण काफी उपयोगी सिद्ध होती है, उतना कोई और काव्य भेद नहीं। दूसरे शब्दों में रहस्य अनुभूति की सूक्ष्म कोमलता काफी के शिल्प विधान के उभरते हुए लक्षण संगीतात्मकता से मिलकर मस्ती तथा हाल अर्थात दीवानगी पैदा करने में पूरी तरह सफल होते हैं। पृष्ठ 31 काफी के शिल्प संबंधी में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान इसे काव्य भेद मानते हैं और कई इसे एक रागिनी मानते हैं। किसी के अनुसार काफी एक सरोदी रचना है जो कवि गाने के लिए रचता है या किसी भी राग में गाई जा सकती है। किसी का मानना है कि काफी छंद की खास जात नहीं है। सूफी फकीर जो प्रेम भरे पद गाया करते हैं और जिन्हें बाद में सारी मंडली मुखिया के गाए पद को दोहराती है, वह काफी के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में काफी गीत का ही एक विशेष परंतु विकसित रूप है। तीखा भरपूर तथा भावों को उद्वेलित करने वाला संगीत इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता आध्यात्मिक या रहस्यात्मक अनुभूति है। यह लोक समूह में गाए जाने वाली रचना है, इसलिए इसका शिल्प विधान सरल होना चाहिए ताकि बात आसानी से सुनने वाले तक पहुंच सके। इसके अलावा इसका उद्वेग इतना तीव्र होना चाहिए कि सुनने वाला स्वाभाविक ढंग से मोहित हो जाए। संगीतात्मकता इसका सर्वोत्तम गुण है क्योंकि यह कव्वालों के द्वारा गाई जाती है। इसमें संगीतात्मकता लाने के लिए आवश्यक है कि इसका आकार छोटा हो, बहिर छोटी बुनी जाए और प्रत्येक पद 3-4 पंक्तियों से ज्यादा का न हो। इसमें स्थायी पंक्ति भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह हर एक पद के बाद दोहराई जाती है। शाह हुसैन की काफियों में संक्षेपता, सरलता तथा संगीतात्मकता तीनों ही गुण विद्यमान हैं। इनकी संक्षेपता तथा सरलता इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पंजाबी काव्य में काफी पहले से विद्यमान है। श्री आदि ग्रंथ साहिब में इस काव्य रूप का प्रयोग किया गया है। काफी के नमूने श्री आदि ग्रंथ साहिब में मौजूद है, परंतु उन काफियों में दार्शनिक गंभीरता प्रधान है। इसमें शाह हुसैन जैसी सरलता, उद्वेग, संयोग, संगीत तथा मस्ती नहीं है। शाह हुसैन पहला सूफी कवि है जिसने सूफी अनुभव को दर्शाने के लिए पंजाबी कविता में काफी को चुना। इसका शिल्प विधान रचा तथा स्थिर किया। इनकी सरलता तथा सादगी ने इन्हें जन साधारण में मकबूल बनाया। यही नहीं, उसकी काफियों ने आने वाले सूफी कवियों को एक आदर्श तथा प्रामाणिक माध्यम प्रदान किया, जिसका इस्तेमाल कर बुल्ले शाह आदि कवियों ने इसको एक विस्तृत अर्थ प्रदान किया। काफी में रहाउ का इस्तेमाल होता है। शाह हुसैन की काफियों में रहाउ मिलता है। रहाउ से भाव वह पंक्ति जिसमें आने वाले भावों को संक्षेप तथा गहराई से गुप्त ढंग से प्रकट किया जाता है या पेश किए गए बयान का वर्णन किया जाता है। शाह हुसैन की कुछ काफियों में रहाओं की पंक्तियां आरंभ में मिलती हैं। पृष्ठ 32, उदाहरण के लिए कानड़ मारू राग की काफी में पहले एक पद है, फिर रहाओ पंक्ति है। बाबल गर्णी पाइया दिन थोड़े पाए, दाज विहुड़ी मैं चली मुख आओ मुख लाओड़े आए, या मौला या माउला फिर है भी मौला। शाह हुसैन की काफियों में काफी भिन्नता मिलती है। यदि किसी काफी में ही रहाउ की पंक्ति का बाकी पंक्तियों से लय ताल नहीं मिलता, जबकि काफी बाकी काफियों में यह लय ताल मिलता है। एक काफी में दो दो पंक्तियों का लय ताल मिलता है, परंतु रहाउ की पंक्ति का लय ताल इनसे नहीं मिलता। इसी प्रकार कई काफियों में लय ताल योजना में काफी अंतर मिलता है। पंक्तियों की लंबाई और मात्राओं की गिनती में भी काफी अंतर है। कई स्थानों पर पहली पंक्ति छोटी और अंतरा बढ़ा रखा गया है, और कई बार पहली और तीसरी पंक्ति को जोड़कर और कई स्थानों पर पहली और चौथी पंक्ति को मिलाकर भिन्नता दिखाई गई है। शाह हुसैन ने अपनी काफियों में पिंगल अर्थात काव्य रचना, छंद विधान का, व्याकरण के नियमों का कड़े से पालन नहीं किया। उसकी काफियां विचार तथा भाव के वेग के पीछे चलती है, इसी कारण संपूर्ण प्रभाव के संगीत झलकता है। उसकी काफियों में काफियां अर्थात पंक्तियों के अंतिम शब्दों का लय ताल में होना मिलाने के लिए भी बहुत स्वतंत्रता ली गई है, जैसे ताजगी, वाजबी, आजजी, जादगी, जागदी, चुक्कियां, छुट्टियां, यारी, अनाड़ी, जमाने, विहानी, जहान, माण। शाह हुसैन के काफियों में अनेक वजन तथा तोल देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ में 20, 28 तथा कुछ में इससे भी अधिक मात्रा के छंदों का प्रयोग किया गया है। काफी में प्रमुख पंक्ति का विशेष महत्व होता है। यह काफी में बहुत बार दोहराई जाती है। यह सारी काफी में संचारशील रहने वाली मूल भावना या उसकी प्राणधारा या थीम को प्रकट करती है। यह स्वाभाविक है कि प्रमुख पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो एक तरफ तो काफी के संपूर्ण अर्थ के मूल भाव को प्रकट करती है और दूसरी ओर पाठक या श्रोता का ध्यान आसानी से खींच सके। इस अर्थ में शाह हुसैन की काफियों में अधिक टेक या प्रमुख पंक्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे पृष्ठ 33, वे गुमानिया दम गमीन गनीमत जान, वेला सिमरन दा उठी दाम धियाए, देहु लथा हरट न गेड़नी जा जीवे ता ढरदा रहुवे वे मैं औगुण आरी साजण कारण मैं जिल्लिया वे लोका तू सालो सहेज हणाए लैनी हरी भजले गाहक वैंदा ई घर किथे ई समझ निधाना गोर निमाड़े घर वे। उपरोक्त टूकों के अध्ययन से एक बात साफ स्पष्ट होती है कि इन सभी में जिज्ञासा उत्पन्न करने या मूल भाव की ओर ध्यान आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार यह भाव उत्तेजना की अनकही शक्ति रखती है। इसके अलावा इनमें काफी के मूल भाव या थीम को भी स्पष्ट या सूत्र रूप में व्यक्त किया गया है या अपने संबोधित किए जाने वाले सुर के कारण ऐसे ही संगीतात्मक भाव तथा माहौल पैदा किए जाने का सामर्थ्य रखती है, जैसे वे नी तू लोका वे वो यार रब्बा मेरे साहिब नी सिहा सहियों आदि। शाह हुसैन की काफियों के छंद विधान तथा विधान में एक बात और महत्वपूर्ण है कि वहां अभिव्यक्त किए गए भाव के अनुकूल होता है। काफी का विषय यदि गंभीर है तो छंद तथा लय में भी गंभीरता नजर आती है। यदि वह शोक तथा उलाहन नायमीय है तो छंद चाल तथा लय में भी उसी अनुसार उतार चढ़ाव होता है तथा छंद चाल में शिथिलता आती है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित काफी का विषय दार्शनिक तथा गंभीर है, इसलिए छंद चाल में उतनी गति प्रतीत नहीं होती। गंभीरता का प्रभाव प्रत्यक्ष है जो छंद चाल से तीव्र हो गया है। असा कितकु सदावणा घर बैठिया मंगल गावणा असा टुक्कर मंग मंग खावणा असा एहो कर्म कमाणा कमावणा इश्क फकीरा दी टोहड़ी एह वस्त अगोचर जोहड़ी असा तलब तेरी है सोहणी असा हरदम रब धियावण। पृष्ठ 34। उपरोक्त के मुकाबले में निम्नलिखित पंक्तियों में रवानगी संगीत तथा भाव इकट्ठे देखने को मिलते हैं। मैनू अमड़ी जो आंख दी कत्तनी मैनू भोली जो आंख दी कत्तनी मैं निज कत्तन नू सिखिया मैनू लगिया सांगा तीखिया मैं पच्छी नू मारा लत्तनी। शाह हुसैन की काफियों में अभिव्यक्त तथा संक्षेपता भी संगीत उत्पत्ति के दो प्रमुख साधन बने हैं। काफी का उद्देश्य हृदय की वेदना या भावना की तीव्रता को व्यक्त करना है, इसलिए इसकी रचना का सीमित तथा छोटा होना स्वाभाविक लगता है। संक्षेपता शाह हुसैन की काफियों में भावात्मक शुद्धता तथा उत्कृष्टता का आधार है। उसकी काफियों में बहुत कम पंक्तियां हैं, परंतु इनमें भी विचार तथा कल्पना दोनों में से भावों के वेग की प्रधानता मुख्यता है, इसलिए कहीं भी रूखापन दिखाई नहीं देता। उद्वेग की सघनता के अनुकूल ही काफी का आकार है। वैसे भी इन काफियों में कवि का दर्द उधार का नहीं बल्कि एक साधक की निजी वेदना तथा वैराग मिलता है। शाह हुसैन के व्यक्तित्व की सरलता सहजता मिठास करुणा सहृदयता संवेदनशीलता स्वयं ही इन काफियों में संगीत की भांति ढल गए हैं। इस दृष्टिकोण से शाह हुसैन की काफियां संपूर्ण काफी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। उसकी यह निजी विशेषता उसकी काफियों में मिलती मैं हूँ मेरा आदि शब्दों से भी प्रकट होती है। संदर्भ एक पंजाबी सूफी कवि दा इतिहास लेखक गुरुदेव सिंह दो चौणवा पंजाबी सूफी कलाम संपादक बलदेव सिंह बद्दन, धर्मपाल सिंघल समाप्त।